जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए, साधु संत आदि सभी मनुष्यों का सत्संग होता है, परंतु यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। यह तो सत्य ईश्वर का संग है और 63 जन्म जो संग करते आए वो सत्य का संग था ही नहीं, क्योंकि सत्य दुनिया में होता है एक, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, बाकी सब झूठे हो जाते हैं। जो सच्चा होता है वो सदा सच्चा रहता है, जो झूठ हो जाता है वो 100% सच्चा नहीं होता। आत्मा सब संग के रंग में आ जाती है, इसलिए आत्माएं सच्चा ज्ञान नहीं दे सकती। सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, जो दुनिया के संग के रंग में आता ही नहीं, अथवा यूं कहें कि उसको संग का रंग लगता ही नहीं, वो ही सच्चा सत्संग कराता है। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रेहान अथवा सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न कोई देवता से सुनते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। क्या क्या बैठा हुआ है कि हम किसी मनुष्य से नहीं सुनते हैं, कोई देवता से भी नहीं सुनते हैं, राक्षसों से सुनने की तो बात ही नहीं, उनकी बातें तो हम कान पर धरते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है कि हम डायरेक्ट ईश्वर से सुनते हैं, तुम सुनते हो भगवान से, और भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है। हमेशा मन भले वो परम धाम में है तो निराकार है ही, लेकिन साकार सृष्टि पर भी आता है और प्रवेश करके पाठ बजाता है तो भी निराकार है। निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो साकारी अर्थात देवभान की स्टेज में आने वाला नहीं है। और भगवान आते ही तब हैं जब बच्चों को भगवान भगवती बनने के लिए पढ़ना है। भगवान है एक, और जब आता है तो भगवान भगवान भगवती बनाता है। भगवान भगवती का टाइटल मिलता है लक्ष्मी नारायण, और कोई का टाइटल लक्ष्मी नारायण अथवा भगवान भगवती का नहीं। भगवान भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे नहीं सकता। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये मनुष्य से देवता बनाने का कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सका। ढाई हजार साल की तो हिस्ट्री हमारे पास है, जो भी आए दुनिया नीचे गिरती चली गई, दुनिया के साथ साथ वो भी नीचे गिरते चले गए। कोई है सच्चा सत्संग कराने वाला जो इस शक्ति पर आता है और संघ के रंग में नहीं जाता, वो सच्चा सत्संग कराने वाला है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प जब संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर के हमको ज्ञान देते हैं। जो जानकारी देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो भी तुम जानते हो कि क्या ज्ञान देते हैं, तुम समझते हो। दूसरा कोई मुश्किल से समझ सके, तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं समझ सकता। तुम का मतलब क्या हुआ? तुम समझते हो, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरे नहीं समझते हैं। क्या मतलब हुआ? तुम कहा जाता है सन्मुख वाले को, जो भगवान बाप के सन्मुख होते हैं, भगवान बाप के सामने हाजिर होते हैं, वो ही समझ सकते हैं। जो सन्मुख नहीं होते, हाजिर नहीं होते, अथवा भगवान जिनके सामने हाजरा हुजूर नहीं होता, वो उन बातों को नहीं समझ सकते। शिव बाबा आते ही जरूर है, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया। आते तो है, निराकार गॉड फादर ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन गीता का भगवान निराकार की जगह साकार कृष्ण को कैसे कह दिया गया? क्या कारण हुआ? क्योंकि वो जो निराकार आता है वो कोई न कोई साकार तन का आधार लेता है। जिन साकार तन धारियों का आधार लेता है वो नंदीगण कहे जाते हैं। सिर्फ एक नंदी नहीं, गण अर्थात समूह, माने दो बैलों की कम से कम जोड़ी है। इंडिया की पहले पहले गवर्नमेंट बनी थी तो उसका भी निशान क्या था? दो बैलों की जोड़ी। ये भी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट भी जब सत्ता में आती है तो ये दो बैल संसार में, इनको बैल के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि सारी दुनिया जानवर बन जाती है। त्रिमूर्ति में भी तीन शेरों के रूप में दिखाई दिए हैं, मनुष्य नहीं दिखाए। क्या दिखाई दिया? शेर दिखाई दिए। शेर तो खूंखार जानवर होता है, तो शेर क्यों दिखाई दिया, बैल क्यों दिखाई दिया? क्योंकि सारी दुनिया मनुष्य से बदतर जानवर बन जाती है, उनमें वो रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती हैं, वो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हबसी बन जाती है। और भगवान को तो आना ही है पतित से पतित कामी कांटों में, बड़े से बड़े कामी कांटे को आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं। तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनमें पहला नंबर प्रत्यक्ष होने वाला होता है कृष्ण की चोला, कृष्ण वाली सोल, जो मृदुल पाठधारी है, माता का पाठ बजाने वाली। आसुरी दुनिया में सब आसुरी बच्चे हैं नंबर वन। घर परिवार में भी देखा जाता है माँ अपने आसुरी बच्चों को भी कभी गोद से अलग करना नहीं चाहती। बच्चे कितने भी दुखदाई हो तो भी माँ उनको प्यार देती है। बाप उतना त्याग नहीं दे सकता, उतना त्याग नहीं कर सकता। तो सुप्रीम सोल जिसे कृष्ण के मधुर मृदुल चोले में प्रवेश करता है, मृदुल स्वभावधारी में प्रवेश करता है, उसको जो आसुरी वर्ग की आत्माएं हैं, विशेष सूर्यवंशी देवता धर्म की आत्माओं को छोड़ करके जो भी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जिनका जखीरा संसार में बहुत बढ़ जाता है, हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के दूसरे दूसरे धर्मों में जाते रहते हैं, दूसरे धर्मों की तादाद बहुत बढ़ जाती है, हिंदुओं की तादाद कम हो जाती है, उन सभी दूसरे धर्मों में से श्रेष्ठ आत्माओं को खींच करके आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो जो आत्माएं आखिरी जन्म में ब्राह्मण बनती है उनमें आसुरी संप्रदाय से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनने वालों की संख्या ज्यादा होती है। इसलिए भारत की परंपरा में नौ कुल के ब्राह्मण गाए गए हैं। कहते हैं कि नौ ऋषि थे, उन नौ ऋषियों से नौ गोत्र चले। तो कोई दूसरे तो थे नहीं। दुनिया में आज जो बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, उन धर्मों से खिंची हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मण धर्म में आई हैं, वही ब्राह्मण बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने को पुरुषार्थ में केंद्र करने में आगे बढ़ते हैं। पहले कौन चेंज होंगे? है सूर्यवंशी चंद्रवंशी पहले चेंज होते हैं, उनमें भी सूर्यवंशी सबसे आगे, और जो पुरुषार्थ करते भी अपने को चेंज नहीं कर पाते हैं वो होते हैं दूसरे दूसरे धर्मों से आने वाले, जो कन्वर्ट हो गए हैं। वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं माँ को दुख देती, माँ को दुख देने के कारण उनका भाग्य नीचे गिरता है, ऊंचा नहीं उठ पाती। माँ कौन? ब्रह्म, कृष्ण की चोला। कृष्ण पहले जन्म का नाम और आखिरी 84वें जन्म का नाम दादा लेखराज ब्रह्म। तो ब्रह्मा की गोदी में पल करके, सुख लेकर के, प्यार लेकर के, स्नेह लेकर के उन आत्माओं ने ब्रह्मा को ही दुख दिया और ब्रह्मा ने सहन किया। उन बच्चों के सामने बाप बाद में प्रत्यक्ष होता है और बाप जो प्रत्यक्ष होता है वो प्यार का रूप नहीं होता है। क्या राम को क्या दिखाए जाते हैं? बाण दिखाए जाते हैं, तीर। ऐसी बातें उनको लगती हैं जैसे तीर का घाव लगता है। तो शास्त्रों में दिखाई दिया है कि असुरों को राम ने बाण मारे, वो असुर भी ब्राह्मण थे, रावण को मगन मेघनाथ जैसे। वो तीर वाली भाषा उनको अच्छी नहीं लगती। अब चूंकि उनकी तादाद बहुत है दूसरे धर्म वालों की जो आकर के ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए ज्यादा हुजूम होने के कारण वो कृष्ण की सोल को ही गीता का भगवान साबित कर देते हैं, उसी से उनको प्यार है। क्योंकि आसुरी चोले वाली आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, तो जब तक उनकी चलती है तब तक अंत तक वो नहीं मानती है कि गीता का भगवान असली कौन है, जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। अभी भी यज्ञ में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, गीता ज्ञान से संसार का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि गीता ज्ञान, गीता ज्ञानामृत का रूप धारण नहीं कर सकता। अमृत तब बनता है जब उसको मनन किया जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा शिव ने जो वाणी चलाई वो मुरली के रूप में हमारे सामने आई 18 वर्ष में, लेकिन वो मनन चिंतन मंथन के रूप में नहीं आई। उसका रस नहीं निकाला गया, उसका मक्खन नहीं निकला। जब तक हर आत्मा अपना मन चिंतन मंथन करके मुरली से मक्खन न निकाले, तब तक वह आत्मा अपने अनेक जन्मों की थ्योरी को नहीं जान सकती। तो ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली चलाई गई, उस मुरली से जिनका प्यार रहा, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, आकर्षक निकलती है सूर्यवंशी चंद्रवंशी। बाकी जो दूसरे धर्म से आने वाली आत्माएं ब्राह्मण बनती है, वो ब्रह्मा के चोले से प्यार करती है। उसका फोटो निकालेंगी, उसकी गोद का प्यार लेंगी, वो चेहरा ही उनको याद आता है। उस चेहरे के द्वारा मुख से जो वाणी सुनाई गई है, वो वाणी उनको याद नहीं आती, न उसको प्रियंती देते हैं, महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें वो रूप अच्छा लगता है, माता का रूप, और माता के प्यार में पलने की आदि हो जाते हैं। बाप का विकराल रूप उनको पसंद नहीं आता, इसलिए बाप से झगड़ा कर बैठते हैं। संगमिक में भी ये झगड़ा होता है। तो जो मुसलमानों का राज्य चलाया औरंगजेब वगैरह का, उन्होंने भी लड़ाई किससे की? अम्मा से की कि बाप से की? औरंगजेब ने भी शाहजहां से लड़ाई की, पकड़ के जेल में डाल दिया। और भी जो क्रिश्चियंस हुए हैं उनमें भी ये हिस्ट्री में आया है कि उन्होंने बाप से दुश्मनी मोल ले ली। माँ का रूप उनको अच्छा लगता है। इन सब बातों की फाउंडेशन कहाँ पड़ती है? संगम। इसलिए मुरली में बोला है देवी की पुजारी है रावण संपत है। क्या? रावण संपत है। क्यों ऐसी बात क्यों बोल दी? इसलिए बोल दी कि आज भी भक्ति मार्ग में जब देवी की पूजा करते हैं तो जय माता दी के नारे लगाते हैं। वो माता कोई विधवा माता है क्या? जिस माता का गायन करते हैं, जय जयकार करते हैं, वो विधवा माता होती है क्या? भारतवर्ष में विधवा माताओं की पूजा होती है क्या? मान्यता होती है क्या? भारत में विधवा माताओं की तो मान्यता नहीं होती। यहाँ तो सदभाव की पूजा होती है, सदभाव की मान्यता होती है। लक्ष्मी नारायण जैसे युगल यहाँ मान्यता प्राप्त करते हैं, और भगवान भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनकर के ज्ञान में चलते हैं उनको ही ज्ञान देने के निमित्त बनाते हैं, उनके घर में ही गीता पाठशाला खुलती है और उनके घर में गीता पाठशाला नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, मन लक्ष्मी नारायण बनना और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाना, अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना और दूसरे घर को भी, दूसरों के घर को भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने के लिए प्रयास करना। ये कोई संन्यास आश्रम नहीं है, ब्रह्मा कुमारियों का क्या है? संन्यास आश्रम है या लक्ष्मीनारायण का मंदिर है? वो तो संन्यास आश्रम हो गया। वहाँ पढ़ाने वाले भी कौन है? सन्यासी है। तो जो सन्यासियों से पढ़ेंगे उनमें भी सन्यास की गुण आ जाएगा। भगवान ने तो आकर के गृहस्थियों को, अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान दिया था। अभी भी अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान देने के लिए आया हुआ है। इसलिए मुरली में बोला था, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्यों? ये अंदर वाले और बाहर वाले क्या हुआ? अंदर वाले इसलिए रह जाएंगे, ये अंदर वाले इतने भी अंदर सरेंडर हुए, वो ब्रह्मा को जाना तो लेकिन माँ को पहचाना। बाप के बच्चे तो बन ही नहीं पाए। जब माँ बाप के बच्चे नहीं बने तो गृहस्थी के भांति कैसे कहे जाए? जैसे सन्यासी होते हैं, कोई गृहस्थी का बंधन नहीं होता, वैसे उल्टा नहीं। यहाँ तो भगवान बाप कहते हैं बच्चे में तुम्हें ऊंची से ऊंची लक्ष्मीनारायण जैसा गृहस्थी बनाने के लिए आया। कीचड़ में रह करके इस दुनिया में गृहस्थी की कीचड़ है, उस गृहस्थी की कीचड़ में रहते हुए भी तुम मन से इतना उपराम हो जाओ कि इंद्रियों का लेप खेप तुमको लगे ही नहीं, ऐसी कला मैं तुमको सिखाता हूँ। कोई भी इंद्रिय का भोग तब तक भोगा जा सकता है जब तक उसमें मन लिम्पायमान हो जाए। अगर मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई भी इंद्रिय का सुख भोगने में महसूस नहीं होगा। क्या मिसाल है इसका? जैसे कोई प्यार करने वाला होता है, महबूब अपनी महबूबा को प्यार करता है, तो रास्ता चलता जाता है उसकी याद में आंखें खुले होते हुए भी याद में मत रहता है। कारखाने में कोई काम करता है, वहां भी काम कर रहा है लेकिन बुद्धि जो है महबूबा में लगी हुई है, उसकी आंखें खुली हुई है, उन आंखों खुली हुई आंखों के सामने से कोई गुजर जाता है, इतना ध्यान में मस्त होता है कि उसे आंख के सामने से गुजरा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि मन दूसरी तरफ लगा हुआ। तो जब मन दूसरी तरफ लगा हुआ होता है तो इंद्रियां अपना विषय धारण नहीं कर पाती, अपना सुख भोग नहीं पाती। तो ये कला भगवान आकर के सिखाते हैं। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है इसको ऐसा सेटलमेंट कर देना चाहिए याद में, और ऐसे की याद में सेटलमेंट करना चाहिए जो स्वयं निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी है। अगर कोई देह अभिमानी की याद में सेटल कर देंगे मन को तो विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। इसलिए परमात्मा बाप की शक्ति पर जब आते हैं तो भले ब्रह्मा के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होते हैं लेकिन मना कर देते हैं कि ब्रह्मा के चोले को याद नहीं करना। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि माँ होती है साकारी। कन्या माताओं को देह का होना बहुत रहता है, वो देहभान उनका खलास नहीं होता। और जो बाप का रूप है जो बाद में प्रत्यक्ष होता है वो है निराकारी बीज। बाप होता ही है बीज, माँ होती है धरणी। धरणी में बीज बोया जाता है। तो सूक्ष्म रूप किसका है? ධර්ණි කාය බීජක බීජේ සුක්ෂම බීජේ බීජ රූප ආත්මා सारे सच्ची रूपी मनुष्य की रूपी धार का बीज कहा जाता है वो है राम बाप। राम बाप की झोल में वो सुप्रीम झोल आवेश करता है, प्रवेश करता है, और जब उसमें प्रवेश होता है तो जो भी आत्मा उसकी याद के रंग के रंग में आती है वो निराकारी से उसको बचती है। मन बुद्धि जब निराकार हो जाए तो निर्विकारी और निरहंकारी आराम से हो जाए। ये सहज राज्यों की प्रक्रिया है। ऐसे बिंदु बिंदु को सिर्फ खींच खींच करके हम याद करें, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप परमात्मा बिंदु, तो खींच खींच करके याद ज्यादा समय नहीं आएगा, निरंतर याद नहीं हो सकती। और जब निरंतर याद नहीं होगी तो पाप कर्म बस हो गई। निरंतर याद तभी हो सकती है जब सहज हो। तो बिंदु की याद सहज नहीं है, कठिन है, लेकिन वही ज्योति बिंदु जब साकार तन में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। क्या एक तो परम धाम में ज्योति बिंदु, और वही ज्योति बिंदु जब साकार शक्ति पर आए और किसी मुकर्रर रथ में प्रवेश करके निराकारी स्टेज को प्रैक्टिकल में धारण करे, जैसे धर्म पिताओं की स्टेज थी। क्राइस्ट को देखो ध्यान से, गुरु नानक को देखो ध्यान से, मोहम्मद को देखो ध्यान से, उनके चित्रों को ध्यान से देखा जाए, महात्मा बुद्ध के चित्र को ध्यान से देखा जाए, चेहरे मोहरे को, तो उनके चेहरे से साकारी स्टेज टपक रही है या निराकारी स्टेज दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि वे अपने धर्म के बीज रूप प्रतिष्ठा है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, आम बीज प्रदपिता, मैं बीज बोने वाला पिता, मैं हूं ही बीज हूं, मैं धरणी में बीज बोता हूं। वो तो स्थूल धरणी है, स्थूल बीज है, और यहाँ तो स्थूल धरणी की बात नहीं, यहाँ चैतन्य कन्याएं माताएं हैं धरणी, माने शक्तियों को गुणों को प्रैक्टिकल में धारण करने वाली धरणी। धारणा ज्यादा पुरुषों में होती है या स्त्रियों में होती है? स्त्रियों में धारणा ज्यादा होती है, धारणा रूप होती है, और पुरुष जो है वो धारणा रूप उतना नहीं बन सकता, लेकिन निराकारी स्टेज पकड़ सकता है, निराकार आत्मा बन सकता है। तो निराकार रूहानी जो आत्मा का रूप है पिता का, वो पिता के स्वरूप को जो याद करते हैं वो खुद भी निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं। अब वो चाहे कन्याएं माताएं हो, चाहे भाई हो, जो भी उस स्वरूप को याद करेंगे वो निराकारी स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे, और जितने जितने निराकारी सूक्ष्म स्टेज धारण करेंगे उतना उतना मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। मन बुद्धि अति सूक्ष्म बनने से अनेक जन्मों की गहराई में आत्मा उतर सकती है। जो जितना ज्यादा गहराई में उतरेगा, ज्यादा सूक्ष्म आत्मा बनेगी, तो अपने जन्मों को पहले प्रत्यक्ष कर लेगी। जिसके अपने जन्म पहले प्रत्यक्ष होंगे वो माला में पहला नंबर आवेगा, चाहे अव्वल नंबर की माला हो, चाहे द्वयन नंबर की माला हो, और चाहे थर्ड क्लास माला हो, और चाहे प्रजावर्ग की फोर्थ क्लास माला 9 लाख वाली हो, लेकिन वो नंबर ऊंचा पा सकता है अगर निराकारी स्टेज में टिके, तो वो टिकेगा तब जब ऐसा संग का रंग मिले। संग का रंग मिलेगा तब जब उस स्वरूप को पहचानेगा, किसको? धारणा जो बाप है उसको पहचानेगा तो उसको याद करेगा, पहचानेगा नहीं तो याद भी नहीं कर सकेगा। तो यही हुआ भगवान आता है माँ के तन में, माँ का रूप धारण करके ब्रह्मा उसको नाम दिया जाता है। तो जो आसुरी बच्चे होते हैं वो ब्रह्मा माने माँ से चिपक जाते हैं, माँ से उनका लगाव हो जाता है। और ऐसा लगाव धारण लगाव भी हो जाता है श्रीमत की वर्गीला मुरलियों में। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को नहीं याद करना, ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन जाएंगे, इसका फोटो भी नहीं रखना, अगर इसका फोटो रखेंगे तो भी वो याद आता रहेगा, याद आएगा। और ब्रह्मा की जैसी गति हुई है, हाथ फेल होकर के शरीर छोड़ा, तो तुम्हारी भी वैसी गति हो जाएगी। प्रैक्टिकल में देखा भी जा रहा है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा के चोले को याद करते रहे या ब्रह्मा के चोले में निराकार शिव को याद करते रहे, उनका आखिरी अंजाम जास्ति क्या हो रहा है पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार कुमारियों का, हाथ फेल हो रहे हैं, अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, किसी को ट्यूमर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो ये संघ के रंग का प्रभाव है। संघ किसका करना चाहिए? ऊंचते ऊंचता संघ करना चाहिए। ऊंचते ऊंच माँ नहीं होती है, ऊंचते ऊंच बाप होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट इसलिए नहीं करना है कि ब्रह्मा के बगैर सदगति नहीं होगी। क्या सदगति देने के लिए कौन चाहिए? ब्रह्मा। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते, पुरुष तन स्वर्ग के गेट खोलने के काबिल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? स्वर्ग के गेट पुरुष क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि सारा दुर्योधन दुशासन धारणा में पीछे रह जाएंगे। ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, लेकिन अपने जीवन में उतना धारण नहीं कर सकते जितनी कन्या माताएं धारण करती है। क्यों कन्या माताएं क्यों धारण करती हैं? हाँ जी, कन्या माताएं क्यों धारण करती है? पुरुष क्यों नहीं धारण कर पाते? क्योंकि प्योरिटी की भाषणा भारत में खास कन्या माताओं के अंदर ज्यादा होती है, पुरुषों में इतनी पवित्रता की धारणा नहीं होती है। इसलिए विदेशी नदियां नहीं गाई जाती हैं, विदेशी नदियों में कोई स्नान नहीं करते हैं। कहां की नदियों में स्नान करते हैं? भारत की नदियों में। नदी वो जड़ नदी की बात नहीं है कि शंकर जी की जटाओं में कोई जड़ चित्र रखा हुआ है किसी कन्या का, वो जड़ चित्र रखने की बात है क्या? नहीं, कोई कन्या माताएं हैं जिनको भगवान ने अपने सर के ऊपर धारण किया, वो ज्ञान गंगाएं हैं। तो वो ज्ञान गंगाएं वही होती है जिनमें पवित्रता की धारणा जाती होती है। यमुना जल भी यमुना को भी पवित्र माना जाता है, लेकिन यमुना के जल में और गंगा के जल में अंतर है। यमुना की मिट्टी चिपकने वाली होती है और गंगा की मिट्टी ऐसी होती है। गंगा जहाँ बहती है वहाँ रेत होता है ना, तो वो चिपकता है क्या? नहीं, मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी। तो कुछ कन्या माताएं ऐसी होती है जो अपने संग का रंग लगा देती है चूपन खा पुतना मिसल, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें विकारी वासना थी, विकारी वासना देता है वो वास्तव। तो जब उसके अंदर होगी नहीं तो दूसरों को संकरण लगेगा और दोनों के बीच में गई जाती है सरस्वती। में जीत की धारा दिखाई जाती है इलाहाबाद में, तो कहते हैं एक तरफ है गंगा, दूसरी तरफ है यमुना, और बीच में जो लीक बचती है, जो आंखों से दिखाई नहीं देती, वो है सरस्वती, वो बीच का पार्ट है। पहले यमुना प्रत्यक्ष होती है, यमुना सूर्य पुत्री कही जाती है, और बाद में गंगाएं प्रत्यक्ष होती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। ज्ञान गंगाएं जब प्रत्यक्ष होंगी तो उत्तर भारत की आत्माएं जागने लगेंगी। अभी दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है, जो दक्षिण की ओर दौड़ के भाग जाती है, दक्षिण में है दक्षिण भारत, वो प्रत्यक्ष हुई है, काला जल होता है। काला जल का मतलब जो ज्ञान जल है वो प्रदूषण प्राप्त कर जाता है, अनेकों का संग का रंग जिसको लगता है तो वो प्रदूषित हो जाती है। अकेले दिल्ली में ही 7-8 नाले गिरते हैं, कहां यमुना में, मथुरा में भी गिरते हैं, अभी तो गंगा भी मैली हो चुकी है लास्ट में आकर के। भले सरकार अभी कितने प्रयत्न कर रही है कि गंगा में प्रदूषण न बढ़े, फिर भी प्रदूषण नदियों में बढ़ता चला जा रहा है, तो उन नदियों के प्रदूषण को दूर करने से उत्थान नहीं हो जाएगा दुनिया का। ये तो भारत की कन्याएं माताएं हैं, इनमें जो व्यभिचार बढ़ रहा है, बाबा यहां तक बता रहे हैं अभी घर घर में वैश्यालय हो गया। ये संबंध जो है वो सब झूठे हो गए, व्यभिचारी हो गए। ये देवर है, ये साढ़ू है, ये जीजा है, बाबा ने तो मुरली ने यहां तक बता दिया कि आज की दुनिया में ऐसे ऐसे भी देखे जाते हैं जो बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, चाचा अपनी भतीजी को नहीं छोड़ता है, जीजा अपने ताली को नहीं छोड़ता है, नारी इसलिए बाप ने जो फरमान निकाला है अगर दुनिया को इस भारत को पतन होने से बचाना है तो साधी नाम की जो संस्था है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ये कैंसिल होगी फिर सब सुधर जाएगा। क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि अभी ये बिच्छू चिंतन की जनरेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं विचार की आवृत्ति से, वो बच्चे सब दुखदायी पैदा हो रहे हैं, खून खराबे के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो माँ बाप को सुख नहीं दे सकते। अब ये जनरेशन बंद करनी है क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, एटम बम बन चुके हैं, हर हर बम बम का प्रैक्टिकल नारा लगने वाला है, वो बम बनाने वाले खुद उसकी क्षमता नहीं रखते हैं कि उन बम का विस्फोट कर सके, क्योंकि वो खुद भी डरते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो इसी दुनिया में हम भी बैठे हुए। ये तो ईश्वरीय कार्य चल रहा है, इस ईश्वरीय कार्य की स्थापना का कार्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो दुनिया का ध्वंस करने वाले एटमिक एनर्जी अपना कार्य शुरू नहीं करेगी। जैसे ही स्थापना पूरी होगी वैसे ही वो कार्य शुरू होगा। तो शंकर जी का कार्य वो बाप का कार्य। बच्चे जब अपने स्वभाव संस्कार से नीचे उतर करके रचना से रचना का भाव छोड़ करके खुद रचयिता बनकर के बैठ जाते हैं तो बाप को क्रोध आएगा या नहीं आएगा? गीता के भगवान की बात चल रही, गीता का भगवान स्वयं बाप निराकार है, शिव शंकर भोलेनाथ है और उसकी जगह जो आतताई बच्चे हैं, हुजूम के हुजूम, उन्होंने किसको गीता का भगवान साबित कर दिया? कृष्ण बच्चे को। तो कृष्ण बच्चे को जब गीता का भगवान, गीता का पति बना करके सामने रख दिया संसार के, तो ये जुलुम की बात हुई ना? ऐसा जुलुम जब समझाने पर भी बच्चों की समझ में नहीं आता है तो बाप को सारी जनरेशन का ध्वंस करना पड़ता है। हर हर बम बम एक खरा। और जब वो विकराल रूप धारण करता है तो उस विकराल रूप के सामने चाहे कितने भी आतताई बच्चे हों उनको झुकना पड़ता है और अंत में सबको मानना पड़ता है कि बाप आया हुआ। मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, लेकिन वो सामान्य अर्थ में ले लेते हैं, नहीं समझते हैं कि ये बोलने की तकनीक क्या है, इसका अर्थ क्या है। वो बोलने की तकनीक ये बताए रही है कि तुम चाहे इस्लामी कामी कुत्ते हो, क्रोधी क्रिश्चियन बिल्ले हो, लेकिन तुम्हारा भी बाप आया हुआ है। जब वो बेकरार रूप धारण करेगा तो कामी से कामी मनुष्य क्यों न हो उनका भी वो बाप बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है। इतना महाकामी कोई हो नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का अंत अति के द्वारा होना है। जब तक अति नहीं होगी दुनिया का अंत नहीं होगा। तो बाप आते हैं पाप में पाप बढ़ाने का रजम करने के लिए। जो दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं ना, वो पापी बच्चे, महापापी की स्टेज में काम करने वाले बच्चे अपने पाप करने से बाज नहीं आते हैं, तो बाप को फिर विकराल रूप धारण करना पड़ता है कि चलो हम तुम्हारे पापों का भी बाप बन करके तुम्हारे पापों का अब अंत कर देता हूं। वो गीता का भगवान जो गीता माता का पति है, गीतापति भगवान भी कहा जाता है, मायापति भगवान भी कहा जाता है और लक्ष्मीपति भगवान भी कहा जाता है, सीतापति भी कहा जाता है। सीता माने ठंडी धरणी। सीता कहां से पैदा होती है? धरणी से पैदा होती है, क्योंकि वो है ही धरणी का स्वरूप। वो गीतापति भगवान लास्ट में प्रत्यक्ष होगा। जब ये ज्ञान का पॉइंट संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा तो हाहाकार। जिन्होंने गलती की है उनको अपनी गलती समझ में आ गई। ये गीता कोई कागज की गीता नहीं है। कागज की गीता की बात है क्या? सर्वशास्त्र शिरोमणि कही जाती है। शास्त्र माने शासन करने वाला। तो शासन कोई जड़ ग्रंथ करता है क्या? कोई चैतन्य है शक्ति जो भगवान की शक्ति बनती है तो सारे संसार को कंट्रोल करती है। और जब आसुरी संप्रदाय के चंबे में आ जाती है, बरगलाबे में आ जाती है, बांधेली माताओं का भी बांधेली माता बन करके एकदम बंधन में अपने को असहाय रूप में बैठ जाती। दुनिया में आज सबसे जास्ती दुखी कौन है, कन्या माता है या पुरुष वर्ग? कन्या माता है, जास्ती दुखी है। भले सरकार कितना भी नियम कानून बनाए रही है कि समान दर्जा मिले, लेकिन समान दर्जा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो भगवान को सृष्टि पर आना पड़ता है धरणी का उद्धार करने के लिए। जैसे रामायण में लिखा है, धरणी पर पापों का बोझ जब जास्ती बढ़ जाता है तो भगवान का अवतार होता है। धरणी वो जड़ धरणी की बात नहीं है, जड़ धरणी न पाप करती है न पुण्य करती है, जड़ धरणी पर रहने वालों की बात है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये तो जड़ तत्वों के नाम है, लेकिन ये जड़ तत्व संसार को चलाने वाले हैं। यानी जड़ तत्वों को भी चलाने वाली कोई चैतन्य शक्ति है, कोई धरणी चैतन्य रूप भी है, कोई वायु का चैतन्य, वायु देवता का चैतन्य रूप भी है। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि रावण की पार्टी से देवताएं बंधे हुए थे, जलवायु अग्नि, वो इशारा करता था और वो कार्य करने के लिए सन्नत हो जाते। अभी एक सिद्ध दबाओ पंखा हवा करने लगेगा, एयर कंडीशन चलने लगेगा, एक स्विच दबाने की देर है एटम बम आग उबलने लगेगा, अग्नि देवता अपना कार्य करना शुरू कर देगा। एक बटन दबाने की देर है चारों तरफ बाढ़ लाई जा सकती है, ऑटोमेटिक मशीनरी लगी हुई, तो वो तो जड़ रूप हुआ। लेकिन इनकी प्रतिनिधित्व करने वाली चैतन्य शक्तियां भी हैं। उन चैतन्य शक्तियों में सबसे मुख्य शक्ति है धरणी। वो धरणी माता अभी बंधन में आ चुकी है, रावण संप्रदाय उनके ऊपर पूरा हावी हो चुका है। वो रावण संप्रदाय की ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है कि माँ मेरी मुट्ठी में रहेगी तो बाप तो मुट्ठी में आ ही जाएगा, क्योंकि बाप माँ के पीछे। लेकिन ऐसा होना नहीं, क्या होता है, जो बरगलाबे में आने वाली है वो बरगलाबे में आकर के सारी सृष्टि का महाकाली बनकर के नाश कर देती है, लेकिन आसुरी सृष्टि का नाश होता है या दैवी सृष्टि का नाश होता है? आसुरी सृष्टि का नाश होता है, दैवी सृष्टि का नाश होने वाला नहीं है। मति भ्रम ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं जगदम्बा सरस्वती ने महाकाली का रूप धारण किया, वो महाकाली का रूप धारण कर चुकी है, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया है पहले से, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, ये कीड़े मकोड़ों की शक्ति को यूं झाड़ू लगाएगी, यूं झाड़ू लगाएगी। कौन सी शक्ति की बात है, दुनिया की शक्ति की बात है या ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों वाली शक्ति की बात है? ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों वाली शक्ति की बात है। ब्राह्मणों की कीड़े मकोड़ों की शक्ति में भी दो प्रकार के हैं, एक रावण को मकान देखना जैसे और दूसरे वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे, जो वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे एडवांस पार्टी के हैं उनमें भी सब धर्मों के बीज हैं। ऐसे नहीं किए हैं वो सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं। तो जो अलग अलग धर्मों के कीड़े मकोड़े को इकट्ठे होकर के बैठे हैं वो भी जगत पिता के साथ जगदम्बा को विशेष महत्व नहीं देते हैं। साथ में रहकर महत्व नहीं देते हैं, क्या करते हैं जगदम्बा को अलग कर देते हैं, बाप को अलग कर देते हैं, जय माता दी पिताजी भूल जाता है। तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हुए या निवृत्ति मार्ग वाले हुए, निवृत्ति मार्ग वाले हो। ऐसी जो निवृत्ति मार्ग वाली आसुरी आत्माएं हैं उनसे जैसे भगवान की लड़ाई हो जाती है। यज्ञ के आदि में भी झगड़ा हुआ, विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड के आरंभ से ही प्रज्वलित हो चुकी थी। क्या हुआ था, टूट गई है माला मोती बिखर गए, दो दिन रहकर साथ न जाने किधर गए, के सात साल में ही सब बिखरा हो गया। कब की बात, यज्ञ की आज की बात, जो आज में हुआ वो सब अंत में भी होता है। आज में भी 300-400 कन्या माताएं इकट्ठी हो गई थी, समर्पित बुद्धि हो गई थी। अंत में भी अब एडवांस पार्टी में 300-400 फिर इकट्ठी हुई पड़ी। आज में भी 300-400 को बंधन आ गया था, कब बंधन कब आया था, जब झगड़ा पड़ा था तो बंधन में आ गई। अभी फिर तैयारियां हो रही हैं आसुरों की, बवंडर मचाने वाले हैं, आंधी तूफान आने वाला है। उस तूफान में जिन्होंने ज्ञान योग धारणा की शक्ति धारण की होगी, सेवा का बल धारण किया होगा, वही नंबरवार बचेंगे। और जो नंबरवार बचेंगे वही माला के मन के साथ तौर तरीका बना हुआ है। अभी ज्ञान के सारे बिंदु क्लियर हो चुके हैं, लोगों की बुद्धि में बैठने लगा है, अंदर से तो बैठ गया है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, लेकिन एक व्यापी कहाँ है वो बात क्लियर नहीं हो रही। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, ये बात भी बुद्धि में क्लियर हो रही, लेकिन उन 84 लाख योनियों का पार्ट बजाने वाला मनुष्य नंबरवार कैसे है वो बात बुद्धि में क्लियर हो रही। गीता का भगवान ये पॉइंट अभी रहा होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में अभी नहीं है। उस मुख से कहते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है, मुख से कहते रहे, आपको कहना भी बंद कर दिया क्योंकि एडवांस पार्टी के द्वारा वो बात क्लियर हो करके टेक्स्टों के द्वारा बीसीजी के द्वारा उनके पास पहुंच रही है। ये ज्ञान का पुल तैयार हो रहा है, पत्थर बुद्धि आत्माएं ऐसी है जो एडवांस नॉलेज को सुनकर के खुद फैसला नहीं कर पाती। क्या जब खुद फैसला नहीं कर पाती तो वो अपने देहधारी मनुष्य गुरुओं के पास ले जाती है उन बातों को, उन ज्ञान रत्नों को कहाँ ले जाती है, अपने गुरुओं के पास ले जाके उनके सामने रखती है। देखो ये है कैसे, ये है बीसीडी, देखो इसमें क्या कहा गया। तो ज्ञान रत्नों का पुल तैयार हो रहा है उन पत्थर बुद्धियों के द्वारा, वो पत्थरों का पुल बनाया गया ना, वो पत्थरों का पुल तैयार हो रहा है, अब बस चढ़ाई होने की देर है, सब क्लियर होने वाला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा के चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, जो राक्षसी चेहरे हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे और जो दैवी चेहरे हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगे। बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे और योग बल वाले राजा ही प्राप्त हो जाएंगे। अभी नजारा सामने आने वाला है, पर्दा उठने वाला है, क्या टमाटर होने वाला है, कोई हटने वाला है, एक तरफ जय जयकार होगी और कोई रोने वाला है, दूसरी तरफ हाहाकार। ये हाहाकार और जय जयकार के बीच गीता का भगवान प्रत्यक्ष हो जाए। तो गीता का भगवान कह दिया है कृष्ण को, किनके बदले? शिव बाबा के बदले। शिव बाबा है गीता का भगवान, उन्होंने शिव बाबा बिंदु को समझ लिया। अब बिंदु तो शिव बाबा होता नहीं, बिंदु क्या है? शिव बाप है या शिव बाबा है? वो तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। बाबा माने ग्रैंड फादर, वो ज्योति बिंदु आत्मा जब किसी साकार शरीर में प्रवेश करे तब ही तो बाबा बने। बाबा ना नाचा चाचा चाचा ये संबंध है, साकार में बनते हैं या निराकार में बनते हैं? निराकार में बनते हैं। तो शिव बाबा गीता का भगवान कहते हैं ये उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, वो जरूर साकार में है, वो निराकार साकार में आता है और गीता के रोम रोम को जानने वाला है। गीता का पति कहा जाता है, पति माना रक्षा करने वाला, रक्षक है। सारी दुनिया भक्षक बनती है और वो रक्षक बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला है नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि क्षण क्षण उसकी नजर है किसके ऊपर? गीतापति भगवान की नजर किसके ऊपर है? गीता के ऊपर। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन भी आता होगा। जब कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया तो कृष्ण तो साकार है, साकार जब बुद्धि में आवेगा तो पतन होगा या उत्थान होगा? एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से सुगति। तो बच्चे दैवी गुण वाले वो सब आसुरी गुणों वाले बनते हैं। कौन? देवी के पुजारी बनते हैं वो सब बनते हैं आसुरी गुणों वाले, जो गीता में कृष्ण का नाम डाल करके कृष्ण को गीता का भगवान बना देते हैं। अब तुम दैवी गुणों वाले बनते हो, अभी तुम भी आसुरी गुणों वाले बन चुके हो, उनके संग के रंग में आकर दैवी गुणों वाला बनते हो। दैवी गुण वाले को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है, जो आसुरी गुण वाला होता है उसको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। निराकार बाप अब आकर के निराकार समझदार अर्थात आत्मा को पढ़ाते हैं। निराकार किसको पढ़ावेंगे? निराकार निराकार को पढ़ावेंगे या साकार को पढ़ावेंगे? साकार माने दे अभिमानी, और निराकार माने देह का भान जिसको न रहे, देह का भान जिसको न रहे वो निरहंकारी होगा या अहंकारी होगा? निरहंकारी। जो निराकारी होते हैं बच्चे उनको कहा जाता आत्मा, आत्मा कहो दूर कहो तुम्हारी देश में रहने वाले मेरे बच्चे देश की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई आत्मा जो कहा भगवान के सन्मुख आकर के बैठे और विपरीत संकल्प के लाए तो आखिरी गुण वाला होगा या दैवी गुण वाला होगा? आखिरी गुण वाला निराकार बार बार आकर के निराकार समझदार आत्मा को पढ़ाते हैं। कोई समझदार है जो बाप के मनु आकर के रूहानी स्टेज आ गए, रूहानी स्टेज में रहकर के पढ़ाई पढ़ते हैं। अगर देवान आया तो खड़ा ये कहा जाता है अर्थात जब रूहानी सब पता है तो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, बच्चे भी समझते हैं। एक ही रूहानी बाप हम लोगों को आकर के पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक है, एक है वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहते हमको पढ़ाने वाला एक है, वो भी तो कहते हैं हमको पढ़ाने वाला एक है, है? एक है कहते हैं लेकिन एक कहकर के जिसका सितारा देते हैं उसे बिंदी बता दी, एक बिंदी पढ़ाने वाली है। अरे वो एक बिंदी कीड़े मकोड़े की है, पशु पक्षी की है, मनुष्य की है, जानवर की है, किसकी बिंदी है? बिंदी तो सभी है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं सबकी आत्मा क्या है? बिंदी है। तो कौन सी बिंदी पढ़ाने वाली है पता चलेगा? तो बिंदी का तो पता नहीं चल सकता, वो बिंदी किसी में प्रवेश करके साकार बने तब साबित हो कि वो एक पढ़ाने वाला है। माने एक साकार संधारी चाहिए जिसमें आत्मा में भले दो नहीं तीन तीन भी हो लेकिन व्यक्ति एक हो तब कहेंगे हमको एक पढ़ाने वाला है। बिंदी के लिए थोड़ा ही कहा जाएगा कि हमको एक पढ़ाने वाली बिंदी है। एक ही रूहानी बाप हम रूहों को आए पढ़ाते हैं, आ करके पढ़ाते हैं का मतलब वो बिंदु प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आकर के प्रवेश करके हमको पढ़ाती है, आए पढ़ाते हैं। तुम रूह अभिमानी बनते हो, देह अभिमानी थे, उसके आने से उसके संग के रंग से तुम देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनने का अनुभव करते हो। कितनी प्रैक्टिस की, कितने साल हो गए? हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम बिंदु है, हम बिंदु है, स्टार है, स्टार है, ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए?
68 साल
हो गए। 68 साल में कितनी रूहानी स्टेज बनी? 10-15 मिनट के लिए ये संकल्प की स्टेज बन पाती है? नहीं बनती। लेकिन वो रूहानी बाप जब रूहानी स्टेज में आकर के बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है और दृष्टि से संग का रंग लगाता है तो बच्चे अनुभव करते हैं कि यह रूहानी स्टेज हमने पहले कभी भी अनुभव नहीं की। तो रूहानी बाप आए करके बच्चों को पढ़ाते हैं, रूहानी पढ़ाई हम आत्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। उन्हें याद करोगे, इसे याद करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। उन्हें माने किन्हें?
जो अगला पार्ट है
ना, उन्हें याद करोगे माने उन देहधारी गुरुओं को याद करोगे तो तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे, या कोई भी उन देहधारियों को याद करोगे तुम्हारे पाप भस्म नहीं होंगे, और इसे याद करोगे ब्रह्म को तो भी तुम्हारे पाप भस्म होने वाले नहीं, सिर्फ मुझे याद करोगे माने पहचानना पड़े कि कौन से विशिष्ट व्यक्ति में तनधारी में वो सुप्रीम सोल आकर के पार्ट बजाएगा तो उसकी दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि बदल जाती है। संग का रंग लगता है ना, तो ऊंच से ऊंच की दृष्टि का संग का रंग हम बच्चों को ऊंचा उठा लेगा और बाकी की दृष्टि हमको नीचे गिरा देगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना देगा, भ्रष्ट भ्रष्ट बना देगा। बाप का बच्चा कब बनती है? बाप का बच्चा बनने के लिए कोई आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कोई बाप का बच्चा बनने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? पहले 9 महीने पेट में पकना पड़ता है, पकना पड़ता है ना? वो तो जिस्मानी बाप है, यहाँ तो रूहानी सृष्टि तैयार हो रही है। तो यहाँ भी अगर बाप का बच्चा बनना है तो 9 दिन पकना पड़े ज्ञान योग की बच्ची में, 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 7 दिन बच्ची। ये 9 दिन के अंदर आत्मा पक करके निश्चय बुद्धि हो जाएगी, निश्चय बुद्धि बना माना बाप का बच्चा बना। इस बात का निश्चय बुद्धि, इस बात का निश्चय बुद्धि कि जन्म जन्मांतर का हमारा बाप कौन है सृष्टि पर, क्या अथवा सारी मनुष्य सृष्टि का बाप इस सृष्टि पर कौन है, ये पक्का निश्चयात्म बुद्धि बन जाए माने बाप का बच्चा बना। जब तक बच्चा नहीं बना तब तक बाप टीचर सदगुरु कैसे बनेगा, है? और बाप टीचर सदगुरु नहीं बनेगा तो वर्षा कैसे मिलेगा, है? वर्षा लेने के लिए बाप को पहचानना पड़े, और बाप निराकार है या साकार है? निराकार इन आंखों से दिखाई देगा? ओ आंखों से दिखाई नहीं देगा, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। कोई कहे हम दर्शन कर जाए तो दर्शन करने से साधारण आदमी दिखाई पड़ेगा। ज्ञान की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। यहाँ रह करके जो ज्ञान सुनाएंगे लोग वो तो फिर भी अधूरा ज्ञान होगा, उनकी बात कन्फर्म नहीं होगी, लेकिन खुद प्रैक्टिकल जाकर के वहाँ पूरी बात सुनेंगे समझेंगे प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे तो पक्का या तो पक्का निश्चय हो जाएगा या तो 7 दिन की भट्टी के अंदर वहां से बात खड़ा होगी। क्या अगर कोई दूसरे धर्म की आत्मा होगी, विपरीत धर्म की जन्म जन्मांतर विरोध करने वाली आत्मा होगी तो वहां टिकेगी नहीं, वो बच्ची का पीरियड है 84 जन्मों का फाउंडेशन पीरियड, जितना स्मूथली भट्टी होगी उतना अनेक जन्म सुख शांति मिलेगी। अपने घर को मंदिर बनाओ, आने वालों को मंदिर लायक बनाओ, तुम अपने कमरा में गीता पाठ अलग बोलो, बाबा ने तो मुर्गी में बोला हुआ है उसी कमरे में गीता पाठ अलग बोलो, उसी कमरे में खाना बनाओ, उसी कमरे में सो जाओ, उसी कमरे में झाड़ पोछा करके क्लास लगा दो, यहाँ तो कौड़ी पैसे का भी खर्च नहीं है इस ज्ञान में, लाखों रुपया तुम इकट्ठे करते फिरो, भीख मांगते फिरो, चंदा करते फिरो, मेगा प्रोग्राम करो और ये क्या नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो, कुछ करने की दरकार नहीं है।